ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रदेश नंबर एक करनाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में किया नए प्रदेश प्रमुख को नियुक्त। रूपंदेही के मोतीपुर औद्योगिक कॉरिडोर घटना के मृतक के परिजनों को राहत देने का सरकार का निर्णय। वैक्सीन लगाने के लिए योग्य माने गए नेपालियों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए सरकार काम कर रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की का कथन। कपिल वस्तु के 6 स्थानीय तहों में फैली हैजा से एक महीने की अवधि में हुई 6 लोगों की मौत। और न्यूजीलैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ा तेजी से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 3 प्रदेशों में नए प्रदेश प्रमुख नियुक्त किए हैं। सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रदेश प्रमुख पद पर बाजरा के देवराज जोशी, करनाली प्रदेश के प्रदेश प्रमुख के तौर पर बांके के तिलक परियार और प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश प्रमुख के तौर पर तेराथुम के परशुराम खापुंग को नियुक्त किया गया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। राष्ट्रपति भंडारी ने कल की मंत्रिपरिषद की बैठक किए गए निर्णयों एवं सिफारिश पर इन सभी को प्रदेश प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए योग्य माने गए सभी नेपालियों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने के हिसाब से सरकार काम कर रही है। कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री कार्की ने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए योग्य माने गए सभी को वैक्सीन देने की सरकार की नीति है। इसी बीच कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने रूपंदेही के मोतीपुर औद्योगिक कॉरिडोर घटना के मृतक के परिजनों को राहत देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी कमेटी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन लगायत के विषय में विचार विमर्श हुआ है। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में आगामी पूस में होने जा रहे पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी स्थायी कमेटी सदस्य देव गुरुंग ने दी। इसी तरह पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में करने का बैठक ने निर्णय किया है। ये जानकारी बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा ने दी। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष सहित करीब 1/3 सदस्यों की पदावधि आगामी फागुन 29 गते समाप्त हो रही है। उपाध्यक्ष शशिकला दहाल, विषयगत समिति के सभापति त्रय तारा देवी भट्ट, राम नारायण बिड़ारी और परशुराम मेघी सहित नेकपा एमाले के 8, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 4, नेकपा माओवादी केंद्र के 4, नेपाली कांग्रेस के 3 सदस्यों की भी पदावधि फागुन 29 गते समाप्त हो रही है। कपिलवस्तु के 6 स्थानीय तहों में हैजा के कारण पिछले 1 महीनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले की कृष्णनगर नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, महाराजगंज नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, विजयनगर गांवपालिका और यशोधरा गांवपालिका में हैजा फैला है। पिछले 1 महीने के अंतराल में हैजा को नियंत्रण करने में समस्या आने के कारण सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2.5 लाख टीका लगाने की तैयारी में है। ये जानकारी जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु ने दी। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जवरा के एकल इजलास सहित आज 2 इजलास में मुकदमे की सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आज भी इजलास में न बैठने से आज के लिए तय किए गए 10 में से सिर्फ 2 इजलास में मुकदमे की सुनवाई हुई। आज प्रधान न्यायाधीश जवरा के एकल इजलास में 7 और न्यायाधीश तेज बहादुर केसी और मनोज कुमार शर्मा की संयुक्त इजलास में 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमे की सुनवाई हुई। इसी बीच नेपाल बार एसोसिएशन ने प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जवरा के इस्तीफे की मांग करते हुए आज भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*1415# ह्यास डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। आज देश भर कोरोना के 533 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 484 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं आज एक संक्रमित की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल नेपाल में 7612 कोरोना के सक्रिय संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सूर्य की उपासना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाए जाने वाले छठ पर्व के दूसरे दिन आज खरना मनाया गया। खरना के दिन सुबह से ही निराहार व्रत लेकर शाम को सखर का खीर बनाकर छठ माता को चढ़ाकर वही प्रसाद ग्रहण करने का प्रचलन है। आज दिन भर उपवास बैठे व्रतालु सूर्यास्त के बाद चंद्र का दर्शन कर ये विधि मनाते हैं। छठ के तीसरे दिन यानी कि कल डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी और परसों उगते हुए सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का समापन किया जाएगा। जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष डॉ. बाबूराम भट्टराय ने कहा कि देश में जब तक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू नहीं हो जाती तब तक देश में स्थिर सरकार नहीं बन सकती। गोरखा की शहीद लखन गांव पालिका के घेरुंग में आज आयोजित कार्यक्रम में डॉ. भट्टराय ने ये बात कही। उन्होंने माओवादी के बीच एकता को भी आवश्यक बताया। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ ने मुक्त कमैया और कमलरी को व्यवस्थित करने के लिए संविधान में की गई व्यवस्था को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज मंत्रालय में संबंधित सरोकार वालाओं के साथ हुई मुलाकात में मंत्री श्रेष्ठ ने ये बात कही। इस मुलाकात में बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर, दांग से आए कमैया और कमलरी के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा भारत के 4 दिवसीय औपचारिक दौरे के लिए आज नई दिल्ली रवाना हुए। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे के औपचारिक निमंत्रण पर शर्मा भारत दौरे पर गए हैं। भ्रमण के क्रम में महारथी शर्मा विभिन्न भारतीय उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूजीलैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बार न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से बढ़ रहा है। यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले 4000 के पार पहुंच गई हैं। न्यूजीलैंड में मंगलवार को कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के 125 नए मामले सामने आए। इसको मिलाकर देश में डेल्टा वेरियंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के 4666 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए कम्युनिटी संक्रमणों में सबसे अधिक न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में सामने आए हैं। यहां सबसे अधिक 117 के पाए गए हैं। इसके बाद वाइकाटो में 2 और नॉर्थलैंड में 6 के दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों में 69 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें 9 गहन देखभाल इकाइयों या उच्च निर्भरता इकाइयों में शामिल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रदेश नंबर 1 करनाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में किया नए प्रदेश प्रमुख को नियुक्त। रूपंदेही के मोतीपुर औद्योगिक कॉरिडोर घटना के मृतक के परिजनों को राहत देने का सरकार का निर्णय। वैक्सीन लगाने के लिए योग्य माने गए नेपालियों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने के लिए सरकार काम कर रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की का कथन। कपिलवस्तु के 6 स्थानीय तहों में फैली हैजा से 1 महीने की अवधि में हुई 6 लोगों की मौत। और न्यूजीलैंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ा तेजी से। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।